नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने एक विस्तारित उड़ान ढांचे की माध्यम से अप्रैल 2027 के बाद भी उड़ान योजना को जारी रखने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिनमें पहाड़ी, पूर्वोत्तर और आकांक्षी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी और लगभग 120 नए गंतव्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। योजना की 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागरिक उड्डयन सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उड़ान एक परिवर्तनकारी पहल रही है, जिसका उद्देश्य आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान में 9 वर्ष में 3.23 लाख उड़ाने के माध्यम से 1.56 करोड़ से अधिक यात्रियों को सुविधा प्रदान की है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। खेल राज्य मंत्री केंतो जीनी ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल राज के टी पटनायक से मुलाकात की। उन्होंने राज्य ओलंपिक संघ को मजबूत करने, खेल चिकित्सा के माध्यम से प्रतिभाओं की खोज को बढ़ावा देने और राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने पर चर्चा की। राज्यपाल ने राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में खुद को साबित करने की क्षमता रखने वाली युवा प्रतिभाओं की व्यवस्थित रूप से पहचान, पोषण और प्रोत्साहन देकर राज्य में ओलंपिक आंदोलन को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने एथलीटों को उनकी सर्वोच्च क्षमता पर प्रदर्शन करने में मदद करने और उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए खेल चिकित्सा और विज्ञान प्रशिक्षण को एकीकृत करने के महत्व पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने मंत्री से पर्वतारोहण, कैनोइंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसे साहसिक खेलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जहां राज्य के युवा वास्तव में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने कल ईटानगर स्थित राज्य केंद्रित पुस्तकालय में न्यू एज लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में शिक्षा मंत्री ने लिखा है कि अरुणाचल सरकार ने सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग के यह पहल युवाओं में नवाचार, डिजिटल साक्षरता और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने लिखा है कि इस केंद्र का उद्देश्य पारंपरिक शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के साथ ही छात्रों, शोधकर्ताओं और पाठकों के लिए डिजिटल संसाधनों, ई लर्निंग टूल्स और सहयोगात्मक स्थानों तक पहुंच प्रदान करना है। इस दौरान श्री सोना ने एक सूचित, शिक्षित और डिजिटल रूप से सशक्त अरुणाचल प्रदेश के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। फिट इंडिया पहल के तहत भारतीय सेना ने आईटीबीपी के साथ मिलकर कल वेस्ट सियांग जिले के आलो में 20 किलोमीटर की संयुक्त साइकिल रैली का सफल आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच तालमेल, अंतर संचालन और संचालन संबंधी सौहार्द को उजागर करना और सैन्य कर्मियों के बीच शारीरिक फिटनेस और सहन शक्ति को भी बढ़ावा देना था। रैली में सेना और आईटीबीपी के अधिकारियों, जूनियर कमीशन अधिकारियों और अन्य रैंक के अधिकारियों ने भाग लिया। पासार विधायक न्याबू जूनी दिर्ची ने आज तोदाक पासार स्टेडियम में जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 T20 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस आयोजन का एक मुख्य आकर्षण महिला क्रिकेट की अग्रणी महिलाओं, अंपायर सह चयनकर्ता सदस्य महिला वर्ग और अंडर 16 बॉयज मारे आदो और BCCI लेवल 1 कोर्स के तहत विकेट कीपर कम ऑलराउंडर जुमगाम बासार द्वारा साझा की गई प्रेरणादायक यात्राएं थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विधायक ने लिखा है कि अतीत में सुविधाओं की कमी के बावजूद उनकी दृढ़ता की ये कहानियां लेपारादा जिले की प्रतिभा का एक शक्तिशाली प्रमाण है। एक दुखद घटना क्रम में तिरप जिले के नामसांग गांव के 2 निवासियों को सोमवार देर रात गांव के स्कूल परिसर के पास जंगली हाथियों के झुंड ने मार डाला है। देवमाली क्षेत्र के इस वर्ष जंगली हाथियों के हमले से हुई ये चौथी और पिछले एक साल में 5वीं मानव मृत्यु है, जो इस क्षेत्र में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष पर बढ़ती चिंता को उजागर करता है। अब तक हाथियों के हमलों में पूर्व विधायक कपचैन राजकुमार सहित 5 जाने जा चुकी है और आगामी 4 से 9 नवम्बर तक वेस्ट कामेंग जिले के रूपा में वेस्ट कामेंग जिला बैडमिंटन संघ द्वारा वांगदी मल्टीपर्पज इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में अरुणाचल राज्य बैडमिंटन संघ के सहभागिता से 12वां मुख्यमंत्री वेटरन और सब वेटरन राज्य बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।